श्रोताओं नमस्कार। चर्चा का विषय है, इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम हर सप्ताह आपके लिए एक परिचर्चा लाते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में आज 15 जिलों की 43 सीटों पर वोटिंग समाप्त हुई। 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी आज उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। तो आज हमारे कार्यक्रम का यही विषय है और हमारे साथ कार्यक्रम में मेरे सहयोगी हर्ष रंजन मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे एक विशेषज्ञ राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद भी मौजूद हैं। आप सभी का भी स्वागत है।
धन्यवाद।
धन्यवाद कमल जी।
और हम कार्यक्रम में बीच बीच में अपने संवाददाताओं को भी शामिल करेंगे और जानेंगे कि झारखंड में जो आज चुनाव हुआ है वहाँ क्या माहौल रहा, किस तरह का चुनाव रहा और क्या अभी तक ताज़ा मत प्रतिशत है, और साथ में हम उपचुनावों के लिए भी अपडेट लेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से।
बिल्कुल। और कमल, जैसा कि आपने बताया, लगभग 67% मतदान की खबर आ गई है अभी तक झारखंड से, और अभी ये चुनाव आयोग का फाइनल फिगर नहीं है। फाइनल फिगर में जैसा कि हम देख रहे हैं थोड़ी बहुत और इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन हम मान के चल सकते हैं कि 67% के आसपास का जो आंकड़ा है ये बहुत ठीक आंकड़ा है। और जो 43 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में मतदान हुआ झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए, उसमें से मैं बता दूं कि 31 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की 950 जो बूथ्स थी वो सेंसिटिव थी, और कुल मिलाकर बहुत ही अच्छे तरीके से और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ है झारखंड में पहले चरण में।
जी, और हम अगर दूसरी उपचुनाव की हम बात करें तो राजस्थान में 7, पश्चिम बंगाल में 6, असम में 5, बिहार में 4, कर्नाटक में 3, मध्य प्रदेश में 2 और मेघालय, गुजरात, छत्तीसगढ़ और केरल में 1-1 सीट पर आज वोट डाले गए।
बिल्कुल, और यहाँ भी मतदान बेहद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। और इसके अलावा वायनाड लोकसभा सीट जो कि केरल की सीट है, वहां पर भी उपचुनाव संपन्न हुए और ये सीट काफी चर्चा में थी। इसके अलावा लोकसभा की एक और महाराष्ट्र की सीट है जहां पर 20 तारीख को दूसरे चरण के लिए चुनाव होगा। तो अब हम केवी प्रसाद से बात करें, इसके पहले सीधे चलते हैं झारखंड रांची, और वहां हमारे संवाददाता के लाल मौजूद हैं हमारे साथ। कृष्ण कुमार, आप आ गए लाइन पर।
जी जी, बोला जाए।
बहुत बहुत स्वागत आपका। और आज का चुनाव कैसा रहा? आपने बहुत बारीक नजर बनाए रखी है 4300 बूथों पर, 4300 विधानसभा सीटों पर। क्या रहा माहौल और क्या खासियत रही आज के मतदान की?
एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो जिन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ, ऐसी आपने चर्चा भी की 950 बूथ, अधिकांश विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित थे, और ये चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों की चुनौती थी कि मतदान शांतिपूर्वक संपन्न कराए। बहुत बड़ी बात है और चुनाव आयोग के लिए उपलब्धि मानी जानी चाहिए कि आज के मतदान में हिंसा की कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं मिली, तो ये मैं देख रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहा। जैसे आज जितने विधानसभा क्षेत्र हुए उसमें ये सरायकेला जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें 77% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। तो ये गौर करने वाली है कि माने खरसावा हो या सरायकेला हो, इसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाना, जबकि माओवादियों ने वोट का बहिष्कार किया था, इसके बावजूद मतदाताओं ने उत्साह पूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो ये बहुत गौर करने वाली बात है। और एक बात ये भी है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में ये देखा मैंने कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अधिकांश संख्या में अपने अपने घरों से वोट डालने के लिए निकली, वो भी गौर करने वाली बात है। और एक बात मैं ये कह दूं कि जैसे पूर्वी सिंहभूम में कोट का एक विधानसभा क्षेत्र है, उसमें एक गाँव है लखैया डी, जहां 60% मतदाता ट्राइबल है। पहले यहाँ के लोग 25 किलोमीटर दूर जाते थे वोट डालने के लिए, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने उनको वोट डालने के लिए उनके गांव में ही मतदान केंद्र बनाया, जहां का मतदान प्रतिशत जो है ये लगभग 80% रिकॉर्ड कर गया। तो ये सब गौर करने वाली बात है। और शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में मतदान का प्रतिशत अधिक रिकॉर्ड किया गया। जी
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हम कार्यक्रम में अपने विशेषज्ञ को शामिल करते हैं। केवी प्रसाद जी, अभी हमारे संवाददाता जैसा कि बता रहे थे, झारखंड में बहुत सी ऐसी सीटें हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, तो ऐसे में निर्वाचन आयोग के सामने क्या चुनौती रहती है जो नक्सल प्रभावित इलाके होते हैं, जो संवेदनशील इलाके माने जाते हैं, और शायद इसीलिए हमने देखा भी है कि चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, वहां पर भले ही राज्य छोटा हो, सीटें कम हो, लेकिन अलग अलग चरणों में विभाजित करके वहां पर मतदान किया जाता है। तो ऐसे में आप इन इलाकों में, अगर जैसे हमारे संवाददाता बता रहे थे कि बढ़ चढ़कर मतदान हुआ, तो इस प्रतिशत को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, सबसे बड़ी ये बहुत ही उल्लास वाली बात है कि ऐसे इलाके जहाँ पे नक्सलवाद या माओवाद का प्रभाव रहा है, तो वहाँ पे सबसे बड़ी जो चुनौती रही, जो आपने एक बात कही चुनाव आयोग के सामने, वो है कि लोगों के बीच में ये धैर्य दिलाना कि कुछ नहीं होगा, आप घर से निकलिए और वोट कीजिए, और सुरक्षा प्रणाली इतना सुदृढ़ है कि सब कुछ ध्यान रखेंगे। और जैसे मैंने सुना और पढ़ा भी, तो निगरानी जो है ड्रोन से भी रखी जा रही थी, तो कई तरह से व्यापक कदम उठाए। तो सबसे बड़ी बात है, लोगों के बीच में जब भय का माहौल हटा दिया आपने, तो घर से बाहर लोग निकल के आएंगे वोट करने में। ये एक, जिसे कहते हैं, हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन जॉब इज टू इंश्योर फ्री एंड फेयर एंड फियरलेस।
जी, विद और हम केरल चलेंगे। केरल में वायनाड सीट के लिए, लोकसभा सीट के लिए आज मतदान हुआ, साथ ही एक और जो उपचुनाव हुआ वो विधानसभा सीट भी थी। सीधे हम केरल अपने संवाददाता राजा मोहन के पास चलते हैं।
जी राजमोहन जी, आर यू ऑनलाइन अभी?
हाँ जी, हाँ जी
जी। राजमोहन जी, क्या रहा वायनाड को लेकर बहुत ही चर्चा थी, वहां पर बहुत वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई है, वो कैसा रहा वहां का उपचुनाव, क्या प्रतिशत रहा और क्या मतदाताओं के बीच माहौल था? आप, यू कैन गो अहेड एंड गिव योर आंसर इन इंग्लिश राजमोहन जी।
इन वायनाड एंड एज वेल एज इन चेलकरा, इन बोथ कॉन्स्टिट्यूएंसीज पोलिंग बिगन ऑन ए ब्रिस्क नोट बट स्लोड डाउन एज द डे प्रोग्रेस्ड। The two constituencies recorded lower voter turnout compared to the previous elections. As per the latest figures available, 64.72% of the total electorate exercised their franchise in Wayanad. The maximum polling was recorded in Ernad Assembly constituency, which recorded 69.42%, while the lowest turnout was in Nilambur constituency, which recorded 61.91%. Initially, in Wayanad, brisk polling was recorded up to 12 noon, nearly 33.93% of the total 14,71,742 voters exercised their franchise.
You mentioned,
Mr. Rajmohan, our expert sitting in the studio, Mr. K.V. Prasad, he wants to ask you a question. Mr. Prasad, please go ahead.
Yeah, Mr. Rajmohan, you mentioned interestingly that the polling percent had come down as compared to the elections 5 months ago. Why do you think so? Because it was supposed to be a high profile contest. Is that there was not enough mobilization, or was there some kind of a voter fatigue?
Actually, it's a high-profile contest, but the lower voter turnout in the constituency actually does not reflect the enthusiasm shown by the voters during the campaign period. Some observers consider that it could be a reflection of the disenchantment of the voters on whom a by-election has been thrust within such a short time span after the general elections. The constituency is considered to be a stronghold of the Congress, but the lower turnout is likely to impact the margin of the of Congress, which the Congress is expecting from the constituency.
Thank you, Mr. Rajmohan. Thank you very much for connecting with us. थैंक यू। तो कमल, हमने देखा कि हालांकि वायनाड के जो उपचुनाव हुए उसमें मत प्रतिशत थोड़ा सा कम रहा पिछली बार के जो मुख्य चुनाव हुए थे, तो प्रसाद साहब हो सकता है कि बहुत कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड होने के बावजूद यहाँ परसेंटेज की वजह से जो प्रतिशत है या जो अंतर है उसमें कुछ हमें अंतर देखने को मिले जो पिछला चुनाव मेन चुनाव हुआ था, पहली चीज। और दूसरी, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी का खाता भी केरल में खुल चुका है।
जी नहीं, ये बहुत जरूरी है। लेकिन जो राजमोहन जी ने हमसे बात कही कि लोग कहीं ना कहीं उनको ये लगा था कि ये इन पे थोपा गया है और वो शायद इसलिए जो जोश था वो दिखा नहीं।
यही सवाल प्रसाद साहब मैं आपसे पूछना इस दृष्टि से चाह रहा था कि जब एक सीट पर पहले चुनाव होते हैं उसके बाद दोबारा उपचुनाव होते हैं तो जो एक मतदाता की मानसिकता है वो किस तरह से प्रभावित होती है जब वो दोबारा से वोट देने के लिए अपने प्रत्याशी को जाता है, तो क्या मुद्दे या जो चुनाव को लेकर उत्साह है वो उसी तरह का होता है या लोकतंत्र में, क्योंकि चुनाव उपचुनाव चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक वोटर के नजरिए से आप इसको कैसे देखते हैं?
देखिए, दो चीज़ हैं, मतलब जो राजनीतिक कई सारे हमने चुनाव देखे हैं, इतने नज़दीक नज़दीक जब चुनाव होते हैं और ख़ासकर जैसे हमने देखा कि हमारे राष्ट्र राज्य कई विधानसभा लोकसभा में दो दो कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ते हैं और एक छोड़ना पड़ता है बाद में, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो वोटर है उसके मन में है कि अरे भाई ये तो जीता हुआ कैंडिडेट है, चलो ठीक है कहीं और चले गए, इनकी पार्टी तो जीत रही है, तो एक तरह से वो घर बैठ जाते हैं। वो एंथुजियाज्म जो आप जिसके आप कह रहे थे, जो जोश दिखना चाहिए, वो क्योंकि पता है कि भाई ये सीट इनकी है, ये जीतेंगे हमारे जाने नहीं जाने से। और दूसरा, ये मुद्दे बदल जाते हैं
जी।
मुद्दों में जो लोकसभा के खासकर वायनाड की अगर आप बात करें, लोकसभा के मुद्दे अलग थे, अब हालांकि लोकसभा में है लेकिन एक तस्वीर खींची हुई है देश में इस वक्त क्या है, तो ऐसे में लोग मेरे हिसाब से अपना आंकलन करके ही निकलते हैं।
अब हम राजस्थान चलते हैं क्योंकि राजस्थान की 7 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर उपचुनाव था और राजस्थान से हमारे संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, हम आपसे समझना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी वो प्रमुख, जिसे कह सकें कि हाई प्रोफाइल सीटें रहीं इन 7 सीटों में जिन पर हमारी सबकी नजर थी, और कैसा दिन रहा, मत प्रतिशत किस तरह का रहा, क्या माहौल रहा?
देखिए, कुल मिलाकर जो 7 सीटों पर चुनाव हुए हैं शांतिपूर्ण संपन्न हुए हैं, यदि कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो। मत प्रतिशत की बात करें तो हाल ही में जो 2023 में हमारे यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे इन्हीं सीटों पर, उनके मुकाबले इस पर मत प्रतिशत कम रहा है। सबसे ज्यादा 75.66% जो मतदान हुआ है वो खीमसर में रहा है। खीमसर एक विधानसभा सीट है जहां पर अभी हनुमान बेनीवाल आरएलपी के चीफ हैं, वो वहां से सांसद निर्वाचित होने की वजह से खाली हुई थी और सबसे ज्यादा हॉट सीट भी यही मानी जा रही थी, क्योंकि यहां पर आरएलपी, कांग्रेस और भाजपा तो त्रिकोणीय संघर्ष था तीनों के बीच में, और आरएलपी की सांसद चुने जाने की वजह से, आरएलपी के जो हनुमान बेनीवाल है उनके सांसद चुने जाने की वजह से ये सीट खाली हुई और उनकी पत्नी अब अपना भाग्य आजमा रही थी। बीजेपी के जो मिस्टर डागा हैं वो बहुत एक छोटे से मार्जिन से, रेवंत राम डागा वो छोटे से मार्जिन से चुनाव हारे थे लगभग 2000 वोटों से, तो सबसे हाई प्रोफाइल सीट ये रही। साथ ही साथ दौसा एक सीट है जो यहाँ पर एसटी बाहुल्य सीट है, यहाँ पर एसटी बड़ी संख्या में है, तो यहाँ से जो किरण लाल मीना है, कैबिनेट मंत्री है राजस्थान सरकार में, उनके भाई वो भाग्य आजमा रहे थे, वो मैदान में थे। साथ ही उनके सामने जो प्रत्याशी थे वो कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर थी यहाँ पर, और यहाँ ये सीट खाली हुई है कांग्रेस के जो मुरारी लाल मीना है उनके सांसद निर्वाचित होने की वजह से। लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात ये रही कि यहाँ पर बहुत कम मत प्रतिशत रहा है, सबसे कम 7 सीटों में 62% मतदान इसी सीट पर हुआ है, जबकि एक और सीट है रामगढ़, वो भी बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, वहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधा संघर्ष था, वहां पर 75% से अधिक मतदान रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये जो ज्यादातर सीटें हैं उनमें से भाजपा के पास सिर्फ एक सीट थी सलुम्बर, और भाजपा के पास खोने के लिए बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, राज्य सरकार भाजपा की है प्रदेश में,
और पाने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि 7 सीटों पर चुनाव हुए हैं। जितेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमल, हम यहाँ भी वही देख रहे हैं जो अभी हमने वायनाड में बात की कि चूंकि ये उपचुनाव हो रहे हैं, हालांकि राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए थोड़ा वक्त बीत चुका है, इतना कम फासला नहीं है जितना लोकसभा का है, लेकिन फिर भी यहाँ मत प्रतिशत कम है। एक तो इस पर टिप्पणी के वी प्रसाद आपका चाहूंगा, और दूसरी यहाँ भी वही चीज है कि बीजेपी के पास एक ही सीट थी इन 7 सीटों में, खोने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, पाने के लिए ज्यादा है।
लेकिन मेरा अपना मानना है कि इन पे बीजेपी का जोर रहा होगा, एक क्योंकि जो रिपोर्ट्स निकल के आई हैं उसमें ये जरूर पता लगा कि कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेतृत्व जो राजस्थान के हैं उनको महाराष्ट्र चुनाव में भेज दिया।
हाँ।
तो ऐसे में पूरा स्थानीय जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके ऊपर ज़्यादा दारोमदार छोड़ दिया, तो इससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा कांग्रेस के अपने। बीजेपी को चूंकि ऐसा एक पॉलिटिकल जो थियरी माना जाता है उसमें यह है कि जब उपचुनाव होते हैं तो राज्य में जो सरकार है उसका जनरली लोग उनकी तरफ झुकान होता है, ऐसा माना जाता है।
और हम अपने श्रोताओं को यह भी बताते चलें कि राजस्थान में 7 सीटें कौन सी थी, दौसा, खिमसर, झुंझुनू, 84, रामगढ़, और जिनका अभी हमारे संवाददाता जिक्र भी कर रहे थे, एक देवली उनियारा और एक सीट थी सलूम्बर। तो राजस्थान के बाद अब हम पूर्वोत्तर चलते हैं, पूर्वोत्तर भारत में असम में भी आज उपचुनाव था विधानसभा सीटों के लिए, और हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मानस, आप हमें सुन पा रहे हैं?
जी, गुड इवनिंग
जी।
लादन क्लियर।
सबसे पहले आप हमें बताएं कि असम के लिहाज से आज का ये उपचुनाव के लिए मतदान कैसे विशेष रहा, क्या क्या कहेंगे आप इसमें?
जी देखिए, अगर हम मतदान की बात करें, जो खबर है लगभग 75% मतदान की खबर है, ये इसमें और इजाफा भी होगा क्योंकि कुल और यहाँ पे रिजल्ट आने मतलब इसमें आने बाकी है। अगर हम लोग बात करें चुनाव के हलचल की, तो इसमें जैसे हम जानते हैं 5 सीटों पर यहाँ पे चुनाव हुआ और 500 सीटें पर एनडीए और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है। हालांकि यहाँ पे एक सीट पे बीपीएफ उम्मीदवार भी है, 2 सीट पे आप आदमी के उम्मीदवार भी है, लेकिन कितना फर्क पड़ेगा वो देखने वाला होगा। 5 सीटों की अगर बात करें तो 2 सीट विशेष करके कहना चाहूंगा, एक
लगता है किसी तकनीकी वजह से हमारा संपर्क,
लेकिन कमल अभी इनसे सवाल और हमें पूछना बाकी है क्योंकि असम बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। एक बार दोबारा मैं पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि असम में फोन लगा लें, क्योंकि असम में 2 साल बाद एक साल बाद 2026 में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं,
और हम प्रसाद साहब से भी यह जानना चाहेंगे कि अगर सीटों के बाद यानी चुनाव के बाद उपचुनाव होता है, तो हमने देखा है कि अभी जो हमारे सामने मतदान प्रतिशत के आंकड़े आ रहे हैं, एक कम उत्साह वोटर्स में नजर आ रहा है, लेकिन अगर किसी चुनाव से पूर्व उपचुनाव होता है तो क्या इस मामले में देखने को मिलता है, क्या उत्साह देखा जाता है, या फिर से मानसिकता पर आऊंगा?
और देखिए, असम में प्रसाद साहब वोटों का जो प्रतिशत रहा है 75 के आसपास रहा है, हालांकि पूर्वोत्तर के राज्यों में आमतौर पर वोट प्रतिशत ज्यादा होता है, बावजूद इसके आप असम को देखें, 4 साल पहले विधानसभा चुनाव हुए थे 2021 में, और शायद हमारे संवाददाता मानस एक बार और जुड़ गए हैं। मानस, आपसे एक सवाल है कि ये उपचुनाव और विधानसभा चुनाव ड्यू हैं वहां पे 2026 में, तो इन उपचुनावों में जो उत्साह रहा और जिस तरीके से मतदाताओं ने हिस्सा लिया, जो एजेंडा रहे, जो मुद्दे रहे पार्टियों के और पब्लिक के, क्या इसे एक तरीके से ये भी समझा जा सकता है जो भी चुनाव के नतीजे आए कि वो इंगित कर रहे हैं कि 2026 का विधानसभा चुनाव कैसा रहेगा?
जी, अगर इसके जवाब के लिए मैं थोड़ा सा लोकसभा में जाना चाहूंगा। हम लोग सब जानते हैं कि जोरहाट को सीट था, ये जोरहाट सीट का जो रिजल्ट था असम में कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी जैसी थी, क्योंकि सबको लगा था नहीं जीत पाएगी, लेकिन वहां कांग्रेस जीतने में सफल रही। 2 सीट की मैं जिक्र कर रहा था, एक सामगुरी और एक बिहाली। सामग्री सीट जो है, जो धुबरी के सेटिंग कांग्रेस एमपी है रकीबुल हुसैन, ये 8 जन है, उसके बेटे ने इस बार वहां पे कॉन्टेस्ट कर रहे, उसके पहले उसके पिताजी भी थे, और बीजेपी ने युवा नेता दीपू रंजन शर्मा को उतारा, तो कांग्रेस का बहुत ही इस पर ध्यान इस सीट पर रहा। दूसरी सीट जो है बिहाली, बिहाली में कांग्रेस पहले अपने के लिए यहाँ पे उम्मीदवार उतारने वाले थे, लेकिन शायद ये था कि गौरव गोगोई के अपने ही गौरव गोगोई के अपने यहाँ पे ऐसा था, तो उसने भाजपा कैंडिडेट को कांग्रेस में ले जाकर आखिरी समय में उसको उम्मीदवार उतारा। और बिहारी में भी कांग्रेस ने पूरा, खासकर गौरव गोगोई ने पूरा अपना शक्ति जो के यहाँ पे कैंडिडेट उतारे और इसे प्रचार किया। बीजेपी ने भी इसमें प्रचार किया। तो ये दो सीट शायद लगता है कि अगर ये सेमीफाइनल मान के चले तो ये दो सीट का रिजल्ट हम लोग को देखना होगा। मुद्दे की बात करें तो बीजेपी और अलायंस ने डेवलपमेंट के इशू पर बात किया और कांग्रेस जो है वो अपने क्या कहेंगे, क्या बोला कि बीजेपी का जो सुशासन नहीं है तो उस मुद्दे पे बात कही, लोकतंत्र भी अपना था। तो ये दो सीट के रिजल्ट के ऊपर कुछ ना कुछ तो असर शायद पड़ेगा 2000, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव के लिए असम में 1.5 साल की समय बाकी है, तो ये देखने लायक होगा। जी
जी, बहुत बहुत धन्यवाद मानस। और हम अपने श्रोताओं को ये भी जानकारी देते चलें, क्योंकि हम उपचुनाव की बात कर रहे हैं, तो ये 31 सीटों पर जो आज मतदान हुआ है, 28 सीटें ऐसी रहीं जिनमें जो विधायक थे वो लोकसभा के लिए चयनित हुए, इसलिए वहां पर उपचुनाव हुआ। 2 सीटें ऐसी थीं जिनमें असामयिक मृत्यु के चलते विधायकों की असामयिक मृत्यु के चलते वहां पर उपचुनाव करवाना पड़ा, और 1 सीट ऐसी रही जहां पर एक विधायक के दूसरे दल में शामिल होने से सीट खाली हुई। तो जो कारण होते हैं प्रसाद साहब उपचुनाव करवाने के, मैं उन पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि ऐसे उपचुनावों को जब निर्वाचन आयोग के समक्ष ये विषय आता है तो किस तरह से इसे देखा जाता है, चाहे वो तारीखों के नजरिए से हो और जो कारण है उनके नजरिए से हो।
देखिए, सबसे बड़ा जो हमारे प्रावधान है, 6 महीने से ज्यादा अगर गैप हो अगले चुनाव का तो ये उपचुनाव को आपको शेड्यूल करना पड़ेगा। अब अभी हर्ष जी बात कर रहे थे असम को लेकर, लेकिन बिहार तो उससे जल्दी है,
बिहार
2025 में आने वाला है।
बिहार में भी हम अपने संवाददाता धर्मेंद्र कुमार राय से बात करने वाले हैं। जी, आप बोले।
नहीं, मैं वही कह रहा था। तो देखिए, वो इसलिए कि जो मानना जाता है कि जो जन प्रतिनिधि है वो जगह खाली नहीं होगी, अगर 6 महीने के अंदर चुनाव है, जैसे अभी बिहार में अगर चुनाव 6 महीने के अंदर होता तो फिर आपको उपचुनाव की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक मूलभूत रूल है, बेसिकली वही है कि जन प्रतिनिधि की जगह है उसको भरा जाए।
जी, कर्नाटक हम चलते हैं सीधे। हमारे संवाददाता सुधिंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम आज के उपचुनावों की अपडेट लेना चाहेंगे। सुधिंद्रा, स्वागत है आपका। तो कैसा रहा आज का उपचुनाव, किन किन सीटों पर रहा, क्या मत प्रतिशत रहा, हमारे श्रोताओं को अगर आप जानकारी दे सकें।
जी जरूर। देखिए, आज कर्नाटक के संडूरु, शिगांव और चन्नपटना में चुनाव बहुत शांतिपूर्ण रहा और मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर चुनाव में भाग लिया। नवजात शिशु के साथ माताएं, व्हील चेयर पर वृद्ध मतदाता, पहली बार मतदान कर रहे नवयुवक और दिव्यांगों ने भी आज काफी तादाद में मतदान में भाग लिया। और आपको अगर वोटिंग परसेंटेज बताएं तो चन्नपटना में सबसे ज्यादा 88.80% आज मतदान हुआ, और शिगांव में 80.48 और संडूरू में 76.24% मतदान हुआ। इस बार चन्नपटना में कांटे की टक्कर देखी गई। केंद्र मंत्री HT कुमारस्वामी ने इस सीट पर 2018 और 2023 में जीत हासिल की थी और वो मंडिया से लोकसभा सदस्य बनने के बाद चन्नपटना के उपचुनाव में उनके बेटे निखिल कुमारस्वामी इस बार NDA उम्मीदवार रहे हैं। और पिछले 2 बार इस निखिल कुमार स्वामी को रामनगर विधानसभा चुनाव और मंडिया के लोकसभा चुनाव में हार मिली थी, तो इस बार उनका जीतना बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि इस बार वो जीत पाए। और इस बार उनकी स्पर्धा वरिष्ठ नेता CP योगेश्वर से है। उनको BJP का टिकट मिलना था, मगर उनको टिकट ना मिलने पर उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है इस बार, और वह चन्नपटना से 5 बार, पिछली बार मतलब कुछ 2-3 चुनाव के पहले वो 5 बार यहाँ जीत चुके हैं। तो इस बार जो कलिगा नेता और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं DK शिवकुमार ने अपना पूरा ताकत यहाँ चन्नपटना में झोंक दिया है, तो ये उनके लिए प्रतिष्ठा का भी विषय बना गया बन गया है। और जस्ट संक्षिप्त में आपको शिवगांव का बता दो, शिवगांव ये पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई का गढ़ माना जाता है और इस बार उनके बेटे भरत बोम्मई चुनाव लड़ रहे हैं और संडूरू कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और जो ई तुकाराम यहाँ तो 2023 में जीते थे वो इस बार सांसद बनने की वजह से उनकी पत्नी अन्नपूर्णा यहाँ चुनाव लड़ रही हैं।
सुधींद्र, हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट केवी प्रसाद बैठे हुए हैं, वो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं।
सुधींद्र जी, आपने एक बात कही कि डीके शिवकुमार ने काफी ताकत लगाई, तो क्या आपको लगता है ये इसके पीछे जो कई दिनों से सुनते आए कि राजनीतिक दोनों के उनकी और मुख्यमंत्री के बीच में जो कुर्सी को लेकर जो क्या इस चुनाव को लेके उस नजरिए से भी देखा जा सकता है?
नहीं, ये सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के बीच तो हम बता नहीं पाएंगे, मगर जो ओल्ड मैसूरू में जेडीएस और कांग्रेस का जो इक्वेशन रहा है, जो यहाँ पे डोमिनेंस रहा है, उसके ऊपर प्रभाव होने की संभावना है, क्योंकि डीके शिवकुमार इस जो चनपटना और उनका जो कनकपुरा क्षेत्र है इसमें उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है
जी।
तो इस चुनाव में अगर निखिल कुमार स्वामी जीत जाए तो जेडीएस को इससे बल मिलने की
जी बहुत है। जी बहुत धन्यवाद सुधींद्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और हम हमारे पास वक्त कम है तो हम सीधे बिहार चलते हैं, क्योंकि बिहार में भी चार सीटों के लिए, विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के लिए मतदान आज था। बिहार से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं
धर्मेंद्र।
धर्मेंद्र, आपका स्वागत है
जी।
तो संक्षेप में धर्मेंद्र, हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या राजनीति की दृष्टि से महत्व रहा आज के इन उपचुनावों का, कैसे आप देखते हैं?
जी, चार सीटों पर आज है जो शांतिपूर्वक मतदान हुआ है, और जो चारों सीट हैं जो यहाँ इनकमिंग जो विधायक थे उनके सांसद चुने जाने के कारण चुनाव हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर शांतिपूर्वक रहा और करीब 53% मतदान हुआ है। बेलागंज सीट जो है गया जिले में, उसको छोड़ दे तो अन्य जो तीन सीटें हैं गया की, जो इमामगंज सीट है, कैमूर जिले में रामगढ़ सीट है, और भोजपुर की तरारी सीट है, जहां से तरारी सीट से जो केंद्रीय मंत्री आर के सिंह चुनाव हार गए थे लोकसभा चुनाव, तो माफ कीजिएगा सॉरी आरा सीट से, तो जो विधायक उन्होंने हराया था सुदामा प्रसाद, तो उनके द्वारा खाली की गई सीट है। तो ये बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं उनके द्वारा छोड़ी गई सीटें हैं जिन पर आज जो मतदान हुआ है, और जो इमामगंज सीट है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जो है वहां पर से विधायक चुने गए थे और उसके बाद सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ी है, और जो भी सीटें हैं वहां पर इन दिग्गज नेताओं ने अपने परिवारजनों को ही टिकट दिया है इस बार चुनाव में
जी।
तो मुकाबला जो मुख्य है महागठबंधन और जो है एनडीए के बीच है, और एक नई चीज है जो चुनावी रणनीतिकार हैं जो अन्य दलों के लिए अब तक जो है स्ट्रेटेजी बनाते रहे हैं प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी जनसुराज है जो 2 अक्टूबर को लॉन्च की गई थी, तो पहली बार चुनाव लड़ रही है।
बिल्कुल, बहुत धन्यवाद।
उनके लिए एक सिग्निफिकेंट है जो पहला पदार्पण हुआ है किसी भी
जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब चुके धर्मेंद्र जी, समय अब बहुत कम है, और बहुत सही बता रहे हैं कमल ये, क्योंकि पहली बार वो चुनाव में आए और बिहार में अब कुछ चंद महीनों में ही चुनाव होने वाला है। तो केवी प्रसाद से आप कुछ एक और सवाल
अंत में बस यही पूछना चाहेंगे, क्योंकि अब पंजाब उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की बारी है जहां पर उपचुनाव होगा विधानसभा सीटों के लिए, और महाराष्ट्र की तो 288 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो 20 तारीख का दिन आपकी दृष्टि से कैसा होगा, कैसी चुनावी हलचल होगी, अंत में अगर आप इस पर टिप्पणी
देखिए। पूरे देश की नजर टिकी हुई है महाराष्ट्र पे, बाकी उपचुनाव उत्तर प्रदेश का भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 9 सीटें वहां खाली हुई हैं, और पंजाब में भी चूंकि सरकार आम आदमी पार्टी के, तो नजर दोनों राज्यों पे ही रहेंगी गड़ी।
बिल्कुल, और अगली नजर जो है सबकी कमल 20 पर है। अब वक्त खत्म हो रहा है,
हम अपने श्रोताओं से अनुमति लेंगे। नमस्कार
नमस्कार।